شروع کرنے والے نہیں ہیں.
ணமோ சிதாணம் ணமோ ஆயிரியாணம் ணமோ வஜாயாணம் ணமோ லோயே சவசாரணம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதம மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயந்த தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மங்கல்யம் சர்வ கல்யாணகாரிகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயனம் ஜெயது சாஸ்திரம் ஜெயனம் ஜெயது சாஸ்திரம் ஸ்யாத் வாத் நய ஷட் த்ரவ்ய குண பரியாய जड कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए जिन वाणी मा
द्वादशांगमयी जिनवाणी माता अनंत उपकार है इसका हमारे ऊपर, जिसने जगत के अबोध बालकों को सब कुछ सिखाया, पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, सब कुछ तो सिखाई है जिनवाणी माँ. अलग अलग अनुयोग है, अलग अलग शैली में बात करते हैं. चलना तो कैसे चलना, तो जिनवाणी माँ कहती है चार हाथ जमीन देख के चलना. बोलना तो कैसे बोलना, तो जिनवाणी माँ कहती है हित में प्रिय वचन बोलना. खाना तो क्या खाना और कब खाना, सब सिखा रही है ना जिनवाणी माँ. जो खाने योग्य है ऐसे भक्ष्य पदार्थों को खाना, और दिन में खाना रात में नहीं खाना. तो कितना कदम कदम पर मानो हमारे को प्रेरणा दे रही हूँ, हमारे को सिखा रही हूँ, हमारे जीवन का निर्माण कर रही हूँ. माँ है, माँ होने का पूरा फर्ज निभाती है. ये जिनवाणी माँ जीना सिखाती है हमारे को, जीवन जीने की कला सिखाती है. और क्या कहूँ, जीना तो सिखाती ही है, मरना तो कैसे मरना, ये भी जिनवाणी माँ सिखाती है. समाधि पूर्वक मरना, संलेखना पूर्वक मरना. कितने सुंदर पंक्तियां मंगलाचरण में बोलते हैं हम. जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का. तो जब जड़ कर्म चेतन बंध की बात करें तो करणानुयोग, और कर्म के अवसान की बात करें तो द्रव्यानुयोग. ये दोनों बातें बतला रही है जिनवाणी माँ. अब आप कर्म के अवसान की बात करो तो पहले बंधन तो सिद्ध करो. बंधन नहीं तो मुक्ति किससे. इसलिए मुक्ति की चर्चा में बंधन की चर्चा अपने आप आ जाती है. इसलिए आचार्य कुंद स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं, गुरुदेव बार बार में कहते हैं कि मुक्त होना है ऐसा नहीं. क्योंकि तू मुक्त होना है ऐसी चर्चा करता है, उसमें भी बंधन झलकता है. इसलिए मुक्ति चाहिए नहीं, मुक्त हूँ मैं, मुक्ति स्वरूप हूँ. द्रव्यानुयोग ऐसी बात करता है. लेकिन भाई मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये चर्चा किसके लिए, बोलो ये चर्चा क्यों कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ. हमारी सारी मेहनत, सारा प्रयास, सारी उठापटक, तत्वाभ्यास, शास्त्राभ्यास, पढ़ना सुनना, ये सब किसके लिए बताओ? सुख के लिए ना, सुख के लिए पक्की बात करते हो? इसका मतलब दुखी हो ये सिद्ध हो रहा है। देखो यदि हमारा प्रयास सुख के लिए चल रहा है इसका मतलब हम दुखी हैं। अब दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं ये बताओ? तो कर्णानुयोग चर्चाएं इस प्रकार की करता है, संयोग से बात करता है ना, तो कर्म सापेक्ष बात करता है। ज्ञानवर्णी आदि आज कर्मों की बात करता है, बंध की बात करता है, सत्ता की बात करता है, कर्म के उदय की बात करता है, लेकिन मैं अभी कर्णानुयोग नहीं पढ़ा रहा, मैं कर्णानुयोग से वीतरागता की सिद्धि की बात कर रहा हूँ, मैं कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि की बात कर रहा हूँ। और जहाँ प्रयोजन की बात आ जाती है समझ लीजिए वो प्रयोजन है द्रव्यानुयोग, ठीक है? इसका मतलब जो कर्णानुयोग की चर्चा यहाँ चल रही है इतने दिनों से, वो कर्णानुयोग की चर्चा कर्णानुयोग के लिए नहीं है, वो शुद्धात्मानुभूति के लिए है। माने कर्मकांड पढ़ना तो कैसे पढ़ना, हम वो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। कल हमने गुणस्थानु की चर्चा भी की, कर्णानुयोग सामान्य की चर्चा भी की, पंच परावर्तन की चर्चा भी की, और लोक की व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी बीच बीच में हमने बात की। मान लो नौवे ग्रह तक चला गया तो घूम फिर के वापस आएगा ना, लौट करके सिद्धालय तक भी चला गया तो कहाँ सुखी हो गया? सुखी होने के लिए इसे बाहरी क्षेत्र नहीं स्वक्षेत्र में आना होगा। कर्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है कर्णानुयोग का। क्या है ये कर्म? जब हम उन कर्मों की चर्चा को पढ़ें तो हमें क्या दिखना चाहिए, कैसा स्वरूप ख्याल में आना चाहिए? ये कर्म की चर्चा भी स्वतंत्रता की चर्चा है, ये कर्म की चर्चा भी कण कण की स्वाधीनता को बतलाने वाली है, ये कर्म की चर्चा भी ऐसा सिद्ध करती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? जो लोग कर्म की चर्चाओं को पढ़कर ऐसा समझते हैं कि कर्म करता है, उन्हें अभी कर्म की चर्चा पढ़ना नहीं आया। निमित्त निमित्तिक संबंध को बतलाता है कर्णानुयोग, उपादान ही करता है यह चर्चा करने वाला द्रव्यानुयोग है, और निमित्त निमित्तिक संबंध बहुत घने हैं यह बात बतलाने वाला कर्णानुयोग है। घने हैं निमित्त निमित्तिक संबंध। कर्म क्या चीज है? बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे भी मिलते हैं यहाँ जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी कुछ चर्चा पढ़ी सुनी नहीं है, वो ये कहते हैं बहुत सारी बातें तो हमारे समझ में ही नहीं आती, ये आप अकर्ता 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 की बात कहते हो, ये बात हमारे समझ में नहीं आती, फिर करें क्या हम? ये कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे छूटे हैं, कर्मों से कैसे मुक्ति हो? भाई कर्म का बंधन कैसे होता है? देखो जीव अलग है और जो कर्म है ये पुद्गल के परमाणु है, ये अलग द्रव्य है, और दो द्रव्य बिल्कुल न्यारे न्यारे है, ये तो महासिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो कर्म इस जीव को बंधते कैसे? कर्म कैसे बंध गए? आत्मा अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक। जो लोग कर्णानुयोग को नहीं मानते वो लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो मानते हैं ना सब, तो मैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से बात करता हूँ भाई। टोडरमल जी साहब दूसरे अध्याय में पूरा यही प्रकरण देते हैं, पूरी यही चर्चा करते हैं। अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन कैसे? आत्मा अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक, और कर्म आत्मा को छूते नहीं। अभी तो द्रव्यानुयोग के माध्यम से ऐसी चर्चा चल रही थी कि द्रव्य पर्याय को नहीं छूता, क्या वो स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है? लेकिन कर्म को तो छूता नहीं है, ये तो सबको स्वीकार होती है बात। आत्मा कर्म को छूता नहीं, कर्म आत्मा को छूते नहीं, तो बंधते कैसे? कैसे बांधता है ये जीव? आप बांधते हैं कर्मों को। देखो कर्मों को छूता नहीं, कर्मों को देखता नहीं, कर्मों को बांधना चाहता नहीं। बोलो यहाँ सभा में बैठे हुए कोई ऐसे हैं जो कर्म बांधना चाहते हो? नहीं बांधना चाहते तो बांध क्यों रहे हो? कि मैं बांध ही नहीं रहा, मैं बांधना चाहता ही नहीं हूँ। तो फिर बंध रहे हैं कर्म। इसका मतलब ये जीव कर्म बांधता नहीं है, कर्म बंधते हैं, ये स्वाधीनता। ख्याल में आ रही है बात? कर्म बांधता नहीं है क्योंकि कर्म बांधना चाहता नहीं है, लेकिन कर्म बंधते हैं, ये वस्तु स्थिति है। तो किससे बंधते हैं? आत्मा का स्वरूप अनटच अस्पर्शी, अरस अरूपी अस्पर्शी। कहता है चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, 89 का था। तो टच ही नहीं करते कर्म, तो बंधेंगे कैसे ये बताओ। तो अनादि काल से आत्मा का और कर्मों का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ये संबंध है। इस संबंध को स्वीकार करना पड़ेगा, इस संबंध की स्वीकृति कर्णानुयोग के बिना नहीं होती, क्योंकि प्रथमानुयोग कर्म बंधन के संबंध की चर्चा नहीं करता, चरणानुयोग कर्म बंधन के आत्मा और कर्मों के संश्लेष संबंध की बात नहीं करता, और द्रव्यानुयोग उसको भिन्न बताता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म है ना, तीन कर्म है। तो ये द्रव्य कर्म की चर्चा कौन करे, भाव कर्म की चर्चा किस शैली में की जाए और नौ कर्म की चर्चा किस शैली में हो? चार अनुयोग नहीं, सब अलग अलग है चर्चा। द्रव्य कर्म से आत्मा का संबंध बतलाने की चर्चा ये कर्णानुयोग की चर्चा, और भाव कर्म से आत्मा का संबंध, आत्मा से भिन्न रागादि पर्याय उनकी चर्चा करने वाला द्रव्यानुयोग। राग के प्रदेश न्यारे और ज्ञान के प्रदेश न्यारे ये द्रव्यानुयोग। राग आत्मा की पर्याय में है, राग पुद्गल का है, राग चेतन का है, चेतन की पर्याय में होता हुआ भी जड़ का है, माने राग पर्याय की चर्चा करे तो द्रव्यानुयोग। ज्ञानावरणी आदि कर्मों की चर्चा करे वो कर्णानुयोग, और जो नौ कर्म की चर्चा करे वो चरणानुयोग। चरणानुयोग किसकी चर्चा करता है? ये खाना, ये छोड़ना, ये रखना, ऐसे चलना, यहाँ रहना, यहाँ उठना बैठना, ये सब चर्चाएं चरणानुयोग करता है। तो आप कहेंगे प्रथमानुयोग क्या करता है? आप कौन सा कर्म लाएंगे बोलो? प्रथमानुयोग तो फिर आप ऐसे तो तीन ही अनुयोग हो गए, तो चौथा क्या करेगा? कि चौथा इन सब के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसने ये काम किया ये बतलाता है कौन? कि प्रथमानुयोग। द्रव्य कर्म किसने बांधे और कैसा फल मिला उस व्यक्ति को, ये बतलाता है प्रथमानुयोग। उसने ऐसा आचरण किया और ऐसा फल भोगा, ये कौन बतलाता है? प्रथमानुयोग। राग से भिन्न त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करके कैसे सिद्ध दशा की प्राप्ति की उन्होंने, ये बतलाता है प्रथमानुयोग। तो प्रथमानुयोग उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रथमानुयोग को भी कमजोर मत समझना, बहुत महत्वपूर्ण है प्रथमानुयोग, हल्के स्तर की बात नहीं। ये भी चर्चा पीछे प्रथमानुयोग की चर्चा करते हुए समागत विद्वान ने चर्चा की होगी, लेकिन फिर भी प्रथमानुयोग इतना महत्वपूर्ण है जो आत्मा के अनादि अनंतता की सिद्धि करता है। सुनिए आपने ये चर्चा, नहीं आई होगी। प्रथमानुयोग आत्मा को अनादि अनंत सिद्ध कर रहा है, क्या गजब बात है भाई। द्रव्यानुयोग से आत्मा अनादि अनंत सिद्ध हो तो बात समझ में आती है, प्रथमानुयोग भी आत्मा को अनादि अनंत सिद्ध कर रहा है। कैसे सिद्ध कर रहा है? कि प्रथमानुयोग की घटनाएं, कहानियां एक भाव की नहीं होती, कई कई जन्मों की होती है, और अनेक जन्मों की चर्चाएं इस बात को सिद्ध करती है कि जीव नया उत्पन्न नहीं होता, सदा से है। चरणानुयोग भी उस आत्मा की शुद्धता को सिद्ध करता है, और कर्णानुयोग भी आत्मा की शुद्धता को सिद्ध करता है, अनादि अनंतता को सिद्ध करता है। कैसे सिद्ध करता है? कर्णानुयोग में जिन कर्मों के बंधन की चर्चा की जाती है, कब से बंधे हैं भैया कर्म, कब से बंधे हैं? मैंने अभी तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कर्णानुयोग ये कहता है पिछले जन्म में तूने ऐसा किया था, इसका मतलब मेरी सत्ता पहले भी थी। अभी जो करेगा इसका फल आगे भोगेगा, इसका मतलब मेरी सत्ता ये देह छूट जाने के बाद में भी रहने वाली है। ये कर्णानुयोग भी जीव के अनादि अनंतता को सिद्ध करता है। कर्णानुयोग आत्मा की त्रिकाल शुद्धता को सिद्ध करता है। आप कहेंगे साहब ये तो द्रव्यानुयोग की बात है, आप सारे विषयों को अपने कर्णानुयोग में मिला लो, ये कोई बात नहीं। मतलब कर्णानुयोग आपका विषय है, आपको यहाँ टॉपिक कर्णानुयोग से वितरकता की सिद्धि करना है दिया गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सबके विषय को अपने में मिला लो, ऐसा नहीं है। देखो भाई ये कर्मों की चर्चा ये इस बात को सिद्ध करती है कि कैसे भी कर्म का उदय क्यों नहीं आवे, कितने भी कर्मों का उदय अनादिकाल से आज तक क्यों नहीं रहा, इस जीव ने कभी भी अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ा। ये कर्मकांड पढ़ने से पता लगता है हमारे को, कितने कर्मों का उदय आया, कितने कर्मों का उदय नहीं रहा आज तक, अनादि काल से कर्मों ने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो चाहते तो इसको जड़ कर देते, वो चाहते तो इस जीव का नाश कर देते, कैसे करें, ताकत नहीं है कर्मों में ऐसी। अरे कर्मों में ताकत की क्या बात करें, कर्मों की ताकत तो ही नहीं कुछ भी। ये भी गुमटसार कर्मकांड पढ़ने से पता लगता है, कर्मों की शक्ति का पता लगता है, कर्मों की हैसियत का पता लगता है, और संयोग में रहते हुए भी, कर्मों के बीच में रहते हुए भी आत्मा कर्मों से अलिप्त रहता है, इस बात का पता भी गुमटसार कर्मकांड पढ़ने से लगता है। अनादिकाल से कर्मों के बीच है ना, एक समय के लिए भी आत्मा कर्मों से रहित नहीं हुआ अनादिकाल से, कि हुआ है कभी कर्म से रहित, कभी तो हुआ होगा, हमेशा कर्म साथ में ही है, साथ साथ ही चल रहे हैं। कर्म जड़ है और आत्मा चेतन है, चेतन की संगति में रहकर उन अनंत कारमाण वर्गणाए कर्म पुद्गल परमाणु, उनमें आज तक कभी चेतनता नहीं आई, और चारों तरफ से अचेतन जड़ कर्मों से घिरा होने पर भी ये चेतन कभी अचेतन नहीं हो गया। देखो आपकी ऐसी स्वाधीनता है, ये स्वाधीनता कर्णानुयोग से नहीं सिद्ध होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से निरपेक्ष है, ये बात इस कर्मकांड को पढ़ने से सिद्ध नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है ना हमारे को ये बात? यार कैसी गजब की बात है, हम तो कहते हैं संगति का असर, संगति का असर, और ये संगति जड़ की संगति में रहता हुआ जड़ नहीं हुआ चेतन, कभी अचेतनता नहीं आई, कभी जड़ता नहीं आई। और बंधन की यदि मैं बात करूं आपके सामने कि जीव ने कर्म को बांधा या बंधन हुआ, तो मैं कहता हूं वो बंधन भी जीव की सामर्थ्य को सिद्ध करता है। चलो कर्म बंधन संसारियों को होता है या सिद्ध परमात्मा को होता है? सिद्धों को नहीं होता। अरे जब कर्म ही नहीं बांधने वाले हैं तो सिद्धों को क्यों नहीं बांध लेते, सिद्ध भगवान के कर्म क्यों नहीं बांधते? इसका मतलब ये है कि कर्मों में बांधने की योग्यता नहीं है क्या? कर्म नहीं बांध सकते चाह करके, ये जीव विकारी परिणाम करे तो कर्म स्वतंत्र योग्यता से एक क्षेत्रारूप बंधे क्या? और बात कहूं, जब ये जीव जागृत हो जाता है तब तो कर्म बंधते ही नहीं। जीव जागृत हो गया, अपने स्वरूप में सावधान है, तब किसी कर्म की ताकत है क्या कि वो बांध सके? कि नहीं नहीं साहब नहीं बांध सकता। जब जीव अपने स्वरूप की खबर जिस जीव को हो गई, दुनिया में कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता। ठीक है, तो कब बांधते हैं ये कर्म? कि जब ये जीव सो रहा हो। देखो वो जो बांधने वाले हैं ना, वो कितने ताकतवर हैं कि मुझे पकड़ेंगे कब? जब मैं सो रहा हूँ, मैं जाग जाऊं तो कर्म की क्या ताकत जो मुझे पकड़े? चेतन भाई अपनी जागृति में कर्मों की इतनी ताकत है जो मुझे पकड़ सके? अरे मेरे नजदीक नहीं आते कर्म यदि मैं जागृत हो जाऊं तो। कौन बलवान है और कितने कर्म आकर के बांधे? बोलो, एक आत्मा और एक कर्म, ऐसा है? तो भाई भाई कहता है एक आत्मा को एक कर्म बांधता है। आठ कर्म बांधते हैं भैया, कितने? 148 कर्म बांधते हैं, बंधन योग्य 120 प्रकृतियां, कितने कर्म? इस जीव के परिणामों का निमित्त पाकर विकारी परिणामों का निमित्त पाकर या विकारी परिणामों का इन्विटेशन पाकर, क्या यह हमारा इन्विटेशन है? कर्म, कर्म की हिम्मत नहीं है कि मेरे इन्विटेशन के बिना मेरे घर में प्रवेश करे? घर में तो प्रवेश कर ही नहीं सकता क्या? दरवाजे तक ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है, अनंत शक्ति संपन्न है, कुदरत के परमाणु है, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, स्वयं प्रभु है, वे कर्म के परमाणु भी, लेकिन मेरी शक्ति के आगे उनकी चलती नहीं है बिल्कुल भी। कौन ज्यादा बलवान होगा? आप ऐसी कल्पना करो कि किसी एक पुलिस ऑफिसर को कोई डाकुओं ने घेर लिया हो, दस डाकुओं ने घेरा और फिर भी वो पुलिस ऑफिसर वहां से बच करके निकल जाए सुरक्षित, कौन ज्यादा ताकतवर है, वो दस या एक? एक ज्यादा ताकतवर है, दस ने घेर लिया और सौ घेर ले गए और फिर भी बच के निकल जाए तो ताकत कितनी होगी? और सौ की जगह हजार हो, दस हजार हो और फिर भी उसे नहीं पकड़ पाए, उसे पराजित नहीं कर पाए, तो उसकी ताकत कितनी होगी? और ये स्थिति कब की चल रही है? जब वो जागृत नहीं है क्या? अरे हमें जो अनंत कर्म प्रति समय बांध रहे हैं, जिसे कर्णानुयोग की शैली में समय प्रबद्ध कहकर के पुकारा गया है, कर्णानुयोग का ये कर्मकांड वाला प्रकरण पढ़ने पर इस बात का पता लगता है कि वो इस जीव को एक कर्म नहीं बांधता, दो नहीं बांधते, अनंत अनंत कर्म पुद्गल परमाणु, क्या अनंत कर्म परमाणु प्रति समय जीव को बांधने का काम कर रहे हैं, अनंत कर्म मिलकर के। तो बांध लिया होगा, अचेतन कर दिया होगा, जड़ कर दिया होगा इसको, परास्त हो गया होगा ये जीव कि कभी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो आप अचेतन अवस्था में? अरे जागृत होने की तो छोड़ो, क्या जागृत हो जाऊंगा तो कर्मों का नामो निशान नहीं मिलेगा, जब मैं जागृत हो जाऊंगा तब कर्म को ढूंढते रह जाऊंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको कर्म। लेकिन जागृत होने के सन्मुख होता हूं और कर्म ढूंढते हैं, कांपते हैं, छोड़ के भागते हैं, ऐसी दशा होती है। शेर हो रहा, शेर हो और सो रहा हो और उसको पकड़ने के लिए जाएं, जागृत शेर को पकड़ने की ताकत किसकी है? शेर जागृत हो और उसको कोई पकड़ने के लिए जाए, किसी की हिम्मत है ऐसी? सोते हुए शेर पर जाल डालने के लिए चार लोग मिलकर के गए, आठ लोग मिलकर के गए, चारों तरफ से उसे घेर लिया, वो सो रहा है, वो शेर सोते सोते थोड़ा सा तो ये बात है, अभी अभी वो जगह नहीं है, वो जग जाएगा तब तो ये टिकेंगे, ये पकड़ने वाले। वो करवट लेता है थोड़ी सी, थोड़ा सा हिलता है, ऐसा लगता है कि जग जाएगा, उसमें भागता है पकड़ने वाला। ऐसी दशा इन कर्मों की है, ये कर्म पकड़ने के लिए आते हैं और यह चेतन, ये जीव तत्व, ये आत्मा शब्द मात्र सुनता है और कर्मों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो क्या होगा, क्या पता जग जाएगा सुन करके।
शून्य तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय।
हाँ सोचो कैसी दशा है भाई साहब, सुनने मात्र से ये चमत्कार हो जाता है। किसी व्यक्ति ने आत्मा शब्द सुना और कर्मों की पकड़ ढीली हो गई। आपको पता नहीं है ये जो चार दीवारी है ना इस हॉल की, इसके अंदर आ जाने वालों के कर्म कैसे धूझ रहे हैं अभी। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपने को दिखते नहीं है ये कर्म, कर्म दिखाई नहीं देते, लेकिन हम जब ये आत्मा की चर्चा सुनते हैं, जब गुरुदेव की वाणी हमारे कर्णेंद्रिय के माध्यम से अंदर में प्रवेश करती है, वो वाणी भी जड़ है, लेकिन जब कर्णेंद्रिय के माध्यम से अंदर जाती हुई हमारे चिंतन का विषय बनती है, हमारे उपयोग का विषय बनती है, तो कर्मों को घबराहट होने लगती है कि क्या होगा भैया, ये तो कोई भरोसा नहीं। कई बार हुआ है ऐसा, हम कई लोगों को पकड़ते थे और कईयों के साथ ऐसा हो गया कि चर्चा को सुनकर के उन्होंने हमारे को घर से बेदखल कर दिया। ये जानते हैं कर्ण इस बात को बराबर, इसलिए घबराते हैं, दूजते हैं, आकर्षण हो जाता है उनमें, पुण्य प्रकृतियों में उत्कर्षण हो जाता है, पाप प्रकृतियों में आकर्षण हो जाता है, कर्म प्रकृतियों में संक्रमण हो जाता है। ये बंधे हुए कर्मों की कैसी स्थिति, कैसे परिवर्तन हो जाते हैं अपने आप, ये कैसी व्यवस्था है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं है क्या, बताओ कौन करता है इस व्यवस्था को। हमें ये उन कर्म परमाणुओं की स्वाधीनता भी ख्याल में आ रही है। देखो न तो हम कर्मों को बुद्धिपूर्वक नष्ट करते हैं, न हम कर्मों को बुद्धिपूर्वक बांधते हैं, हमारे विकल्पों से कर्म बंधते नहीं और हमारे विकल्पों से कर्म छूटते नहीं। इससे क्या सिद्धांत निकला कि हमारे विकल्प कर्म को बांधने में और छोड़ने में निरर्थक है। कर्म परमाणु अपनी योग्यता से बंधते हैं और अपनी योग्यता से छूटते हैं। कितने बंधेंगे, कब बंधेंगे, कब तक बंधे रहेंगे और बंधने के बाद में कब उदय में आएंगे, कौन करता है ये व्यवस्था, कौन कर रहा है, किसी ने तो सेट की होगी, किसी ने तो ऐसी व्यवस्था की होगी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्मों की इस व्यवस्था को कर सके। तीन लोक में किसी की ताकत नहीं है, अरे कैसे कर सकता है, जड़ के काम को ये चेतन कैसे करे, अजीव पुद्गल के कार्य को ये जीव तत्व कैसे करे, दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, नहीं कर सकता। कैसे होता है प्रकृति बंद, कैसे होता है प्रदेश बंद, स्थिति बंद कैसे होता है, अनुभव बंद कैसे होता है, टोडरमल जी ने सब सिखाया है, चारों अनुयोगों से सिखाया है। टोडरमल जी जैसा चारों अनुयोगों का प्रवक्ता पिछले 2000 वर्षों में दूसरा नहीं दिखता, बोलो। पिछले 2000 सालों में जैसा चारों अनुयोगों का सांगोपांग विवेचन टोडरमल जी ने किया है और जो बैलेंस बना करके बात की है, ऐसी ऐसा प्रवक्ता कोई दूसरा नहीं दिखता हमारे को। गुरुदेव को बहुत महिमा आती थी टोडरमल जी की, तो कहते थे सातवां अध्याय तो पढ़ते रहना चाहिए, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, अपने हाथ से लिखा उन्होंने पूरे सातवें अध्याय को, भूल निकाली है हमारी टोडरमल जी साहब ने। कैसे हो जाए बोलो, प्रकृति बंद क्या बतला रहा है, प्रदेश बंद क्या कह रहा है, उनके रहस्य में जाकर के बात करें तो हमारे को कण कण की स्वाधीनता ही दिखती है। मैं नहीं चाह करके उनको बांध रहा हूं, मैं नहीं चाह करके उनका बंटवारा कर रहा हूं, उनका बंटवारा कौन कर रहा है। आप जानते हैं प्रदेश बंद किसे कहते हैं, आप जानते हैं प्रकृति बंद किसे कहते हैं। प्रदेश बंद की व्याख्या जैसी करता हूं वैसी आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश दोनों का एक क्षेत्र का संबंध, इसका नाम प्रदेश बंद। कभी नहीं सुनी होगी आपने ऐसी बात, प्रदेश बंद किसका नाम, प्रदेश, प्रदेशों का बंधन, एक क्षेत्र का संबंध, संश्लेष संबंध, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कर्म को हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन कर्म साथ साथ रहते हैं, एक क्षेत्र होगा, इतना घनिष्ठ संबंध है। देखो मैं जिस इस पर बैठा हूं तखत पर, इस तखत के साथ में मेरा एक क्षेत्र होगा संबंध है अभी, बराबर। शरीर के साथ भी एक क्षेत्र होगा संबंध है, लेकिन इनका एक क्षेत्र होगा संबंध ऐसा है जो यहां से उठेंगे और एक क्षेत्र होगा संबंध छूट गया। शरीर के साथ में जो एक क्षेत्र का संबंध है वो इस तरह का संबंध है कि शरीर छूटेगा और हम चले जाएंगे और दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, वो छूट रहा है। और ये कर्मों के साथ में एक क्षेत्र का संबंध कैसा है, कितने पुराने हैं कर्म, बोलो, अनादि से, अनादि संबंध देखिए। गोमटवार कर्मकांड ये कहता है कि आपके साथ में बंधे हुआ कोई भी कर्म 70 गोड़ा कोड़ी सागर से एक समय भी ज्यादा पुराना नहीं है। चलो तो इसका मतलब अनादि अनादि की जो चर्चा चल रही थी उसको तो 70 गोड़ा कोड़ी तक ले आए, बोलो इसको देख करके कितनी महिमा थी हमारे को। हम सोच रहे भाव अनादि से हमारे को कर्म बंधन हो रहा है, अनादि से बंधन में, अनादि से बंधन में, अरे छोड़ अनादि की बात, 70 गोड़ा गोड़ी लागर के भीतर आ जा। इससे ज्यादा कोई भी कर्म किसी भी जीव के साथ में कभी भी नहीं रह सकता है। हमारे साथ में 70 कोड़ा कोड़ी दागर से पुराना कर्म नहीं है, ठीक है। अब और सुनो चर्चा, आपके साथ में 70 कोड़ा कोड़ी दागर वाला भी नहीं है, हमारे साथ में 70 कोड़ा कोड़ी दागर वाला भी नहीं है। ये क्यों नहीं है कि ये जिनवाणी की चर्चा सुनते हुए क्या क्षयोक्षम तो साथ में लेकर के आए है ना, इतनी बुद्धि है हमारे पास में, जिनवाणी सुनने का भाव हृदय में होने से मुंबई से यहाँ तक आए, ये विशुद्धि। और वीतरागी संतों की ये बात कर्णेन्द्रीय के माध्यम से रुचि पूर्वक उत्साह पूर्वक सुन रहे हैं, इसका नाम देशना लब्धि। और इस चर्चा को उत्साह और रुचि पूर्वक सुनकर यहाँ से उठने के बाद भी इसके संदर्भ में चलने वाला चिंतन मंथन और भूलन क्या वो काल प्रायोगिक लब्धि जैसा क्या। और इस कर्मों की चर्चा में कहते हैं कि उस प्रायोगिक लब्धि के काल में तेरे कर्मों की सत्ता जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर थी वो घट करके अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है, एक कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर भीतर लो और कम कर दिया। अब किस बात का डर है आपको, अभी डर लग रहा है आपको कि नहीं नहीं गाँव एक कोड़ा कोड़ी सागर भी बहुत होते हैं पंडित जी, हम एक कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म कोई कम होते हैं क्या, कि नहीं 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 ऐसा नहीं, तुम सुनो तो सही। अभी आगे वो जो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक के भी कर्म होवे, अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन भी होवे, और ज्यादा भी मान लो 70 कोड़ा कोड़ी तक का भी बंधन होवे, वो बंधन आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध रूप है, माने वो प्रदेश बंद है, वो तेरे सुख दुख का रंच मात्र भी कारण नहीं है, उससे तुझे रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं कि अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे मालूम चले कि मालूम नहीं चले और यहाँ चिपकली बैठी हो, क्या कितनी तकलीफ हुई, पूर्वी पिंड समाना, मूल गाथा कुंद कुंद स्वामी कह रहे बोलो आप, पूर्वी पिंड समाना मिट्टी के ढेले के समान है, कितने 162 कितने नंबर गाथा जी, ऐसी है तो ये ऐसा ही नंबर है, मिट्टी के देने के समान कुछ भी करने में समर्थ नहीं। ये कौन से बंधन की चर्चा चल रही है, एक क्षेत्राव का संबंध हो तो होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बगल में बैठे तो बैठे रहो, एक क्षेत्राव का संबंध का मतलब बगल में क्या, किसे कहते एक क्षेत्राव का संबंध, मुझ में नहीं है, मेरे भीतर प्रवेश कर नहीं सकते, मेरे प्रदेशों में तो उनका प्रवेश हो नहीं सकता, बस नजदीकी बतलाने का नाम है प्रदेश बंध, नजदीक है। प्रकृति बंध क्या कहता है बोलो, प्रकृति बंध ने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो कर्म आए थे जिनका एक क्षेत्राव का संबंध हुआ था, हर समय अनंत कर्म परमाणु आ रहे थे, उन आते हुए अनंत कर्म परमाणुओं का बंटवारा कर दिया प्रकृति बंध ने क्या, प्रदेश बंद एक क्षेत्राव का संबंध और प्रकृति बंद प्रकृतियों में बंटवारा, क्या स्वाधीनता है भाई साहब, कैसे सुपर कंप्यूटर लगे हुए होंगे आपकी दुनिया के, सुपर कंप्यूटर सब फेल है, वो ऐसा कैलकुलेशन कर नहीं सकते, वो ऐसी नीचे की रचना नहीं कर सकते, वो इस बात की व्यवस्था नहीं बैठा सकते कि कौन से कर्म परमाणुओं को किसके खाते में डालने, उनमें से ज्ञानावर्णी के खाते में कौन सा जाएगा, उनमें से दर्शनावर्णी के खाते में कितने परसेंट जाएगा है, कौन से कर्म परमाणु मोहनी के खाते में चले गए, कौन से कर्म परमाणु किसी और के खाते में चले गए, वेदनी में, आयु में, नाम में, गोत्र में, अंतराय में, सब में बढ़ जाता है ना, आयु कर्म जीवन में एक बार, और बाकी 7 कर्मों में वो कर्म परमाणुओं का जो बंटवारा हो गया है, वो बंटवारा आपसे पूछ करके हुआ था क्या भाई साहब, आपसे नहीं पूछा, बिना पूछे अपने आप ही, कोई तो कर रहा होगा इस व्यवस्था को, कोई तो देख रहा होगा, ये कर्म बंधन की सारी व्यवस्था किसके हाथ में है, उन जड़ कर्मों के हाथ में, जो जड़ कर्म अचेतन है, ना समझ है, अज्ञानी है, जिनमें अकल नहीं है, जिनमें समझ नहीं है, उन कर्मों से जाकर के पूछो तो उनको पता ही नहीं है कि मैं बांध रहा हूं, कर्मों को इस बात का पता ही नहीं है कि मैं बांध रहा हूं, कैसे ऑटोमेटिक चल रही है व्यवस्था। इसके लिए टोटरवाल जी साहब ने उदाहरण दिया दूसरे अध्याय में, और कहते हैं एक भोजन का रास मुख में रखने तक का तो तू विकल्प करता है, और जैसे ही गले से नीचे उतरता है उसके बाद में तू क्या विकल्प करता है बता। अनार का एक दाना तेरे मुंह के माध्यम से चबाया गया बुद्धि पूर्वक विकल्प पूर्वक, और अंदर जाने के बाद में उसका परिणमन कितना हड्डी रूप होना है, कितना रस रूप होना है, कितना मांस रूप होना है, कितना ब्लड रूप होना है, कौन कर रहा है ये सब, कितना मलमूत्र रूप होना है, कितना पसीने रूप से निकलेगा, कौन कर रहा है व्यवस्था। ये स्वसंचालित नहीं है व्यवस्था, मैंने कर्मों की इस व्यवस्था को देख करके बिल्कुल यह बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि कर्तान धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, कोई कर्ता धर्ता नहीं है, अणु अणु अपने आप में लीन है, स्वाधीन है। ये कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है, मुझे तो इसकी स्वतंत्रता को देख करके ख्याल में आता है कि यार क्या गजब है ये जैन दर्शन, कोई करने वाला नहीं और अपने आप हो रहा है, और फिर वो बांधने की व्यवस्था तो अपने आप है ही, बंटवारे की व्यवस्था अपने आप हो ही गई है, और बंधने और बंटवारे के बाद में अब वे कर्म कब तक बंधे रहेंगे, वे कर्म कब उदय में आएंगे, वे कर्म उदय में आकर के कैसा फल देंगे, उनका कैसा रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने पर भी ये जीव सुखी होगा कि नहीं होगा, इसमें भी स्वाधीनता है। अभी हमने प्रदेश बदली की बात कही कि बगल में बैठा है उससे क्या फर्क पड़ता है, तकलीफ कब होगी कि दिख रही ओह अब घबराता है, बिच्छू चढ़ गया मान लो यहाँ पैर पर चढ़ गया वो चलता हुआ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्यों नहीं है तकलीफ, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है इसलिए तकलीफ नहीं है, और जैसे ही हमारा उपयोग उसकी तरफ गया रे फिर रोने लगता और बिच्छू अरे सांप आ गया, फिर रो रहा है मूर्ख, उपाय क्या है, उपाय ये है उसकी तरफ नहीं देखना। गुरुदेव ने क्या उपाय बतलाया बतलाओ मेरे को, इस मध्य कर्म की तरफ, क्योंकि कर्म की तरफ देखेगा और तू रोएगा और इतने कर्म है, बंद कर ना देखना, क्या कितना सुंदर उपाय है। कर्म का काम कर्म में होता है, जब कर्म परमाणु अपना काम नहीं छोड़ते तू अपना ज्ञायक स्वभाव पना क्यों छोड़ने की बात करता है, तू ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं रहता। कर्म परमाणु बंधन का काम करते हैं, अपनी स्वतंत्र योग्यता से बंधने का काम करते हैं, उदय का काम करते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण का संक्रमण का जैसी उनकी योग्यता है अपनी स्वाधीनता से वे कर्म परमाणु अपना काम करते हैं। जब प्रत्येक पुद्गल परमाणु अपनी योग्यता से अपना अपना काम करता है तो ये चेतन इतना मूर्ख क्यों है कि अपना काम छोड़कर पर के काम की तरफ अपनी बुद्धि लगाता है, ये अपना काम क्यों नहीं करता। तू अपना काम कर तो कर्म भी सोचेंगे यार ये मेरी तरफ देखता ही नहीं, मैं जबरदस्ती इसके पास जाता हूँ, फिर क्या होगा, वे छोड़ के भाग जाएंगे। क्या ये उपाय है, इनविटेशन तो हम देते हैं और फिर जब वो आते हैं तो रोते हैं, अरे यार बहुत काम है बहुत माता, तो तूने तो बुलाया भी है सबको, मेहमानों को निमंत्रण देता है और फिर आते हैं, आने के पहले से ही कितने संकल्प विकल्प थे, वो आएंगे क्या बनाना है क्या करना है, है कैसे व्यवस्था करेंगे, तो तेरे को इतने संकल्प विकल्प इतनी परेशानी है तो इनविटेशन काहे को दे रहा है मत दे भैया। बहुत तेज बात है, तुमने कर्मों को बुलाया इसलिए कर्म आए, और बुलाने का भी बात कैसी है, बुलाने की भी बात ऐसी है कि बुलाना चाहता तो नहीं है, अनजाने ही इनविटेशन दे रहा है, ना समझी में इनविटेशन दे रहा है, तेरे रागादी परिणामों का निमित्त पाकर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वे कर्म परमाणु जो कारमाण वर्गणाएं थी वे कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो रही है, कर्म इस जीव को नहीं बांध रहा है, इस जीव ने कर्मों को पकड़ रखा है। तैतरवी गाथा के भावार्थ में कहते हैं, बोलो समय सार कैसी बात करते हैं, कर्म बांधता है, कर्म बांधता है, कर्म बांधता है, सारा जगत ऐसी चर्चा करता है। थोड़े बहुत पढ़ने लिखने वाले करते हैं, सब कर्मों ने बांध लिया, कर्मों ने बांध लिया। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, जयचंद जी चावड़ा साहब कहते हैं, अरे मूर्ख, कर्मों ने तुझे नहीं बांधा है, तू कर्मों को पकड़ के बैठा है। कितने किसको पकड़ा बोलो? तो प्रकृति बंध में क्या हुआ कि प्रकृतियों में बंटवारा हो गया, ठीक है। अब स्थिति बंध, ये किसका नाम है? काल, उसका समय, टाइम पीरियड, कि ये जो कर्म बंधे हैं, ये कर्म कितने समय तक बंधे रहे, उसका नाम है स्थिति, टाइम पीरियड। कितने लगते हैं आप, कितने समय तक रहेंगे? तेरे परिणामों का निमित्त पाकर के, ये घना निमित्त नैमित्तिक संबंध। हमारे परिणामों में ये ताकत है जिसके कारण वो कितने समय तक रहेंगे, ये नक्की हुआ स्थिति बंद। अब ये कैसा फल देंगे, ये भी बंद से समय उस योग्यता में शामिल है। ये योग्यता किसकी है? ये कर्म की है। फल किसमें दिया जा रहा है? फल किसमें है? फल देने की सामर्थ्य किसमें? अनुभाव शक्ति है ना, तो कर्म परमाणुओं में। इसका मतलब प्रकृति बंध कर्म परमाणुओं में, प्रदेश बंध कर्मों में, स्थिति बंध कर्मों में, अनुभाव बंध कर्मों में। तो आत्मा में तो बंधन है ही नहीं कुछ, ये सब तो बंध कर्मों में हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं, प्रकृति बंध किसमें हो रहा है? मतलब देखो, कर्मों का बंधन, कर्मों की स्थिति मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, और आत्मा की स्थिति अनादि अनंत, दोनों की स्थिति अलग अलग है ना। आत्मा कर्म के फल को भोग सकता है कि नहीं? अभी जो हम तकलीफ की बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे कर्म हमारे को तकलीफ देता है, कर्म हमारे को परेशान करता है, तो हमने क्या बात कही कि कर्म तेरे नजदीक बैठा है। ये किससे बात कही हमने? प्रदेश बंद से। फिर प्रकृति बंध के अंदर हमने ये बात कही कि जो नजदीक बैठा था वो वहां बैठे बैठे ही बट गया, मेरे में कुछ नहीं किया उसने। तो इसका मतलब प्रदेश बंध ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। प्रकृति बंध में जब वो बंटवारा हो गया तो उस बंटवारे ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने मेरा कहां बिगाड़ किया कुछ। अब स्थिति बंध, अब वो कितने समय तक मेरे बगल में बैठा रहेगा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? पड़ोसी है, 10 दिन के लिए बैठा रहे, जब 20 दिन के लिए बैठा रहे, साल भर के लिए बैठा रहे, जब 10 साल के लिए बैठा रहे, वो कर्मों का जो स्थिति बंद है उससे मुझे क्या तकलीफ है बोलो। आपके बगल में यदि कोई व्यक्ति, कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई आकर के बैठा है, आपके बगल में कोई बैठा है जिसके कैंसर है, जिसके तकलीफ है, जिसके हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, बैठा रह लीजिए, कोई बात नहीं। आपके बगल में कोई बहुत ज्यादा बदसूरत व्यक्ति बैठा हो तो आपको तकलीफ होती है कुछ? तो मेरे बगल में ये जड़ कर्म बैठे हैं तो मुझे काहे की तकलीफ है? देखो कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब प्रदेश बंद इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, प्रकृति बंद इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, स्थिति बंद इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। आप कहेंगे पंडित जी ये तो हम भी समझते हैं, अनुभव की बात करो। कोई बात नहीं, की भी बात कर लेते हैं, उसमें क्या हो गया, अनुभाग बंध की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो अनुभाग है जिसे अपन फलदान शक्ति कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं कि ये कर्म फल देता है, तो ये कर्म फल कब देता है? जब बंधता है तब फल देता है, जब बंधा रहता है तब फल देता है, या उदय में आने के 15 मिनट बाद में फल देता है? ये कब फल देता है? ये जब बांधते हैं तब कोई तकलीफ नहीं है, होती भी नहीं है कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होती, इसीलिए तो बैठे बैठे हंस हंस के कर्म बांधते रहते हैं। बांधने में काहे की तकलीफ है? तो बांधते रहते हैं, हम हंसते रहते हैं, कर्म बांधते रहते हैं, बांधते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और आ जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक बात और कहूं मार्मिक बात, कितना भी बुरा से बुरा पाप क्यों नहीं कर ले, कर्मों के बंधने की जो योग्यता है वो एक समय प्रबंध से ज्यादा है ही नहीं। और कितना भी अच्छा से अच्छा कार्य क्यों नहीं करो, एक समय प्रबंध से कम बंधते ही नहीं। अब सब टेंशन से फ्री हो जाओ आप, बिल्कुल। आप कुछ करो चाहे मत करो, विकल्प करो या नहीं करो, कर्मों को समय प्रबंध मात्र ही बंधना है।
विकल्प
क्या विकल्प चालू रहेगा? बात तो विकल्प की है, बात तो संसार दशा की चलती है। संसार दशा में ये काम होता है। चलो कोई बात नहीं, अनुभाव बंध की बात करते थे। आज हमने कोई कर्म बांधा, बंधने के बाद में अब वो प्रकृति ने तकलीफ नहीं दी, प्रदेश ने तकलीफ नहीं दी, जितने समय के लिए बंधा तब तक हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए दर्शन मोहनी कर्म बंधा, 7000 वर्ष उसका अबाधा काल है। इसका मतलब 7000 वर्ष तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो आज यदि कोई मिथ्यात्व तो हुआ है परिणाम, तो आप 7000 वर्ष के लिए तो टेंशन फ्री हो जाओ। 7000 वर्ष तक तो वो कुछ बिगाड़ेगा नहीं, और हमारी तो उम्र 70-80 साल। अब हम टेंशन ले रहे हैं कब तक की? वो कोड़ा-कोड़ी सागर होगी, कोड़ा-कोड़ी सागर होगी तो टेंशन ले रहा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जब उदय में आएगा तब तो तकलीफ होगी ना, उदय में आएगा तब तो बहुत परेशानी होगी कि उदय कितने समय का है। मतलब एक समय मात्र का कर्म का उदय मात्र, क्योंकि कर्म को उदय में आने के बाद में अगले समय वो कर्म बचता ही नहीं है। जिस कर्म को तू नष्ट करना चाहता है, किसको कर्म नष्ट करना चाहता है? देखो इधर से चलो आप, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, इन तीनों से तो हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो होते रहो, अपने क्या फर्क पड़ता है। अब अनुभव बंद जो था, जिससे फल मिलता था, हम उस कर्म को नष्ट करना चाहते हैं, बराबर? कौन से बंधन को नष्ट करना चाहते हो आप? अनुभव बंधन को, क्योंकि प्रकृति प्रदेश और स्थिति तकलीफ नहीं देती, अनुभव हमारे को तकलीफ देता है, इसलिए अनुभव बंध को हम नष्ट करना चाहते हैं। अब ये कर्णानुयोग के ग्रंथ ये कहते हैं कि वो जब अनुभव आता है तो एक समय फल देने के बाद वो अपने आप ही कर्म नष्ट हो जाता है, तुझे करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई? एक समय बाद में वो कर्म फल देने के बाद में टिकता ही नहीं है, तू नष्ट किसको करना चाहता है? कैसी स्वाधीन व्यवस्था है भाई ये अनुभाग भी। और मार्मिक बात कहूं, अनुभाग शक्ति के कारण जब कर्म का फल मिलता है तब भी ये जीव सुखी दुखी हो ऐसा नहीं है। क्या? यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं। यदि ये कर्म मुझे विकार कराने लगे, कर्म मुझे दुखी करने लगे, नहीं करते हैं, उदय आ रहा है तो उदय को उदय में चलने दो, मत देखो उसकी तरफ। जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कर्म का उदय आने पर भी कर्म के उदय की तरफ दृष्टि नहीं देते हैं, उनका कर्म का उदय कब आता है और कब चला जाता है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुण्य के उदय और पाप के उदय दोनों की बात करता हूं, इसलिए कर्म से टेंशन लेने का काम नहीं, क्योंकि कर्मों में कुछ अकल ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कर्णानुयोग का प्रकरण तो बेअकल वालों का है, तो कर्म भी बेअकल वाले जड़, और तीन लोग की रचना में भी जड़पना है, तो कर्णानुयोग की चर्चा तो जड़ के लिए है। क्या? और मैं चेतन हूँ, उससे भिन्न बिल्कुल न्यारा निराला तत्व। इसलिए जिस अनुभव की हम चर्चा कर रहे थे, उस कर्म का फल मिलने पर भी ये जीव जब अपने स्वरूप से बाहर निकलकर उसकी तरफ झांकता है तो तकलीफ होती है, तो दुखी होता है। और यदि उस कर्म के उदय की तरफ न देखे, अपने हाल में मस्त रहने वालों को कौन दुखी कर सकता है? कितना भी दुखी करना चाहो, जो व्यक्ति अपने हाल में मस्त रहते हैं उन्हें कोई दुखी कर सकता है क्या? अरे यार ये तो हमेशा ही मस्त रहते हैं, इनको तो कितने ही संकट आ गए हमने देखा ये मस्त रहते हैं। तो यही बात तो हम कह रहे हैं, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, वे मस्त सदा ही रहते हैं। हर हाल में मस्त रहते हैं, ये ज्ञानियों की चाल बड़ी अजब अजब की होती है। पाप कर्म का उदय किस में आएगा? अच्छा, पाप कर्म के उदय में क्या क्या काम होता है एक बार देखो आप, थोड़ा सा समय तो हो गया है अपना, लेकिन उस पाप कर्म के उदय में होने वाले कामों को देखोगे और फिर अपने आप को देखोगे तो आपको लगेगा उस पाप कर्म के उदय ने आप में कुछ भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, पाप कर्म का उदय आया और बीमारी लग गई तो मुझ में क्या हुआ भाई? पाप कर्म का उदय आया और कोई व्यक्ति मेरी निंदा करने लगे। अब ये किसी कर्म का उदय आया तो कोई व्यक्ति मेरी निंदा करने लगे, अपमान होने लगा। अब मैं सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है तो पता है तकलीफ कब होती है? कोई व्यक्ति निंदा कर रहे हो ना तब तकलीफ नहीं होती, वो निंदा सुनता है तो तकलीफ होती है। आप सोचो थोड़ा सा गंभीरता से। अभी मैं यहाँ से उठ करके अपने रूम में चला गया और यहाँ से 50-100 लोग मिलकर के मेरी बुराई कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं है, तो करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो तकलीफ नहीं है ना किरण भाई? अब तकलीफ कब होती है? तकलीफ तब होती है जब ऐसा विचार करता है कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो तकलीफ होती है। तो मैं कहता हूँ कि जो तेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको बोलने देना, तो देखे मत, तकलीफ नहीं। अब बोलो, अब वो अभी किसी कर्म का हो जाए आपका क्या बिगाड़ेगा बताओ? इन कर्मों को इस तरह से देखोगे आप तो आपको स्वाधीनता का अनुभव होगा, आपको आनंद का अनुभव होगा। और कर्मों को देखेंगे तो कर्मों से दृष्टि हटेगी, और कर्मों से दृष्टि हटेगी, बाहर से दृष्टि हटेगी तो स्वभाव की तरफ जाएगी, और जब दृष्टि स्वभाव की तरफ जाएगी तो कर्मों का नामो निशान मिट जाएगा, सबके जीवन में ऐसी दशा प्रकट हो किसी भावना से।
Thank you.